कल मुकद्दम शाह और हुरिया को हवेली से निकलना था, इसीलिए आज वो अपने सारे काम निपटा देना चाहता था। सारे काम निपटाते निपटाते उसे रात के 11:30 बज गए। दादा साईं से मिलने गया तो वो आराम कर रहे थे। वो उन्हें डिस्टर्ब किए बगैर ही वापस अपने कमरे की तरफ चलाया। कमरे में आया तो हुरिया भी शायद सो रही थी। वैसे वो इस तरह से कभी सोती नहीं थी, उसका इंतजार करती थी, लेकिन आज जरूरत से ज्यादा लेट हो गया था। जिस दिन से उसकी शादी हुई थी वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगा था। दादा साईं भी उससे बहुत खुश थे। वो हुरिया को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे फिलहाल बहुत भूख लगी थी और मुलाजमा का हाथ का खाना वो कभी पसंद नहीं करता था। जब से उसकी शादी हुई थी अम्मा साई काफी बेफिक्र रहने लगी थी। उन्होंने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां हुरिया के हवाले कर दी थी। उसके लिए मुकद्दम ने ही उनसे कहा था कि अब आप बेफिक्र हो जाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी बीवी आ गई है। अभी मुकद्दम सोच ही रहा था कि वो हुरिया को जगाए या ना जगाए कि हुरिया की आंख खुल गई। आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, वो बैठते हुए बोली तो मुकद्दम मुस्कुराया। मुझे अंदाजा था कि तुम मेरा इंतजार किए बगैर नहीं सो सकती, अब जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है, वो बेड पर बैठते हुए बोला। इस वक्त घर के ज्यादा लोग सोते नहीं थे, बस अपने अपने कमरे में चले जाते थे। हुरिया उसके करीब से उठने लगी जब उसकी आंखों पर नजर गई। इससे पहले कि वो उठती मुकद्दम ने उसका हाथ थाम लिया। तुम रोई हो, क्यों रोई हो तुम, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? किसने कहा है फूफो साईं? मुझे पहले ही अंदाजा था कि वो बास नहीं आएंगी, उनसे तुम्हें खुद बात करता हूँ, वो उससे कहता बेड से उठा। मुकद्दम साईं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। और मैं नहीं रोई हूँ, उसने खौफजदा होकर फौरन उसका हाथ थामते हुए बोली, लेकिन मुकद्दम के रोकने का कोई इरादा नहीं था। मुकद्दम साईं, मैं कह रही हूँ ना, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, और अगर खाला साईं कुछ कह भी दे तो क्या फर्क पड़ता है, उनकी बातें सुनने की आदत है मुझे, वो समझाने वाले अंदाज में बोली। इसका मतलब है किसी और ने कुछ कहा है, किसने कहा है बताओ मुझे, इस बार वो उसका चेहरा थाम कर नरमी से बोला। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा मुकद्दम साईं, आपको गलत फहमी हो रही है। तो अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो ये आंखें सुर्ख क्यों हैं, बताओ मुझे, इससे पहले कि वो कुछ कहता किसी ने दरवाजा खटखटाया, इस वक्त कौन हो सकता है, ये सोचते हुए मुकद्दम ने दरवाजा खोला। मुकद्दम लाला, अभी थोड़ी देर पहले बाबा साईं मेरे कमरे में आए थे, वो कह रहे थे कि दूध पीने से तबीयत जल्दी ठीक होती है, सर में भी आराम आ जाता है। ये ले हुरिया दीदा, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, ये जल्दी से पी ले ताकि आपके सर का दर्द ठीक हो जाए। धड़कन ने दूध का गिलास उसके हाथ में थमा दिया और मुकद्दम की तरफ मतवजा हुई। आपको पता है आज दादा साईं और बड़ी अम्मी और फूफो साईं ने इनको इतना डांटा, बेचारी इतनी रोई है, वो मुकद्दम को देख कर बताने लगी, जबकि मुकद्दम का ध्यान उसकी बातों पर जरूर था लेकिन वो देख हुरिया को रहा था। अम्मा साईं ने तुम्हें कुछ कहा है, वो बेयकीनी से पूछ रहा था। हाँ मुकद्दम लाला, उन्होंने ही कहा है, वो कह रही थी कि ये दीदा ने आपको फंसा कर आपसे शादी कर ली है, अब आपकी जिंदगी खराब कर देगी, बस करो धड़कन, जाओ यहाँ से। इससे पहले कि धड़कन और कुछ कहती हुरिया फौरन उठ खड़ी हुई। दीदा मैं तो बस इसे इस तरह से गुस्सा होते देख कर धड़कन परेशान हो गई। धड़कन गुड़िया तुम अपने कमरे में जाओ, इससे पहले कि हुरिया कुछ जवाब देती मुकद्दम ने कहा। ओके गुड नाइट, धड़कन को अब वहां अपना रुकना बेमकसद लगा। हुरिया ने उसे दिन में भी ये सब कुछ मुकद्दम को बताने से मना किया था, लेकिन उसने खुद से ही सोचा कि वो मुकद्दम को जरूर बताएगी, आखिर उसे भी तो पता चले कि उसके पीछे वो दिन रात ताने सहती है। शायद हुरिया के गुस्से की भी यही वजह थी, लेकिन धड़कन को फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो गलत था। तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया हूर, वो गुस्से से बोला। मैं नहीं बताना चाहती थी, और प्लीज इस वक्त मेरे सर में बहुत दर्द है, आप मुझसे बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछेंगे, उससे नजर मिलाते हुए उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू गिरने लगे। मुकद्दम ने अगले ही पल खींच कर उसे अपने सीने से लगाया। मैं बहुत बुरी हूँ मुकद्दम साईं, जब से इस हवेली में आई हूँ सबकी जिंदगी हराम कर रखी है मैंने, वो उसके सीने से लग कर फूट फूट कर रोने लगी। तुमने मेरी जिंदगी जन्नत बना दी हूर, वो उसके बालों में उंगलियां चलाता बोला। खटिया बाप की खटिया बेटी हूँ, इस बार हुरिया के रोने में शिद्दत आ गई। नहीं हो तुम उसकी बेटी, सिर्फ मेरी हो, मेरी बीवी हो तुम, उसे अपने साथ लगाए उसे रोने दे रहा था। आपकी जिंदगी में शामिल होकर मैंने आपकी जिंदगी खराब कर दी, वो फिर से रोते हुए बोली तो मुकद्दम बेख्तियार मुस्कुराया। वो उसे कभी नहीं बता सकता था कि उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने के बाद वो आसमानों में उड़ रहा है, अपनी जिंदगी को एक ख्वाब तसव्वुर करने लगा है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अपनी मोहब्बत को हासिल करके वो सब कुछ हासिल कर चुका है। वो उसे ये सब कुछ बताना नहीं चाहता था, वो उसे एहसास दिलाना चाहता था अपनी मोहब्बत का। लेकिन इस सब के लिए सबसे जरूरी ये था कि मुकद्दम इस घर में हूर को एक पहचान दे, और उसने ये करने का फैसला भी कर लिया था। धड़कन अपने कमरे में जा रही थी जब पीछे से मुलाजमा की आवाज आई, धड़कन बीबी इसे करदम साई के कमरे में दे आए। अभी उनका खास मुलाजिम दे कर गया है, उसने कहा है कि ये फाइल करदम साई को देनी है। इस वक्त अगर मैं उनके कमरे में जाऊंगी तो गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन आपसे नहीं होंगे, तो ये फाइल आप उन्हें दे आए। मुलाजमा ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जबकि आज के वाकये की वजह से उसका दिल बिल्कुल भी करदम को देखने को नहीं कर रहा था। वो उससे खफा थी, इसलिए इस वाकये के बाद उसको देखा तक नहीं चाहती थी। उसके बाद वो घर पर रहा, लेकिन धड़कन ने उसे बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। डिनर टेबल पर उससे बिल्कुल भी बात नहीं की। लेकिन अब ये सच था कि इस वक्त करदम के कमरे में मुलाजमों में से कोई गया तो वो बहुत गुस्सा होगा। उसने मुलाजमा के हाथ से फाइल पकड़ी और ऊपर की तरफ जाने लगी। दरवाजा खटखटाने की जहमत नहीं करनी पड़ी क्योंकि दरवाजा पहले ही पूरा खुला था। वो बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। उसे आते देखकर लैपटॉप एक साइड पर रखने लगा, जबकि वो फाइल बेड पर रखती वहीं से पलट गई। धड़कन मेरी बात सुनो, मुझे लगता है आज जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए, और शायद मैं भी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया। मुझे लगता है हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, करदम ने उसे इस तरह से मुंह बनाकर खड़े देखकर कहा, जबकि वो उसकी बात को अहमियत दिए बगैर वहां से जाने लगी। धड़कन मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और यहाँ पर तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। करदम को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। पहले जो कुछ भी हो यकीनन धड़कन की गलती नहीं थी, लेकिन अब तो वो सब जानबूझकर कर रही थी। इस वक्त मैं कोई बात नहीं करना चाहती, धड़कन वापिस जाने लगी जब नजर स्टडी की टेबल के साथ रखी कुर्सी पर पड़ी और कुर्सी के कोने के साथ पीले रंग के टसल। ये यकीनन ताइशा का था। ताइशे ने काफी होशियारी से काम किया था, लेकिन फिर भी चोर अपनी कोई निशानी छोड़ के जाता है। उसने वो टसल कुर्सी से उतारा। आज सुबह ताइशा ने उसी रंग के कपड़े पहने थे और उसके दुपट्टे के चारों कोनों के साथ ये टसल्स थे। उसने टसल करदम को दिखाते हुए अपनी मुट्ठी में रखा। उसका इरादा करदम के कमरे में रुककर उसे सफाई देने का नहीं, बल्कि ताइशा से वजह पूछने का था। वो ताइशा के कमरे में आई। वो ये तो जानती थी कि उसकी करदम के साथ शादी उसे हरगिज पसंद नहीं आई, लेकिन वो इतना गिर सकती है ये उसने कभी नहीं सोचा था। उसने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुलता चला गया। धड़कन तुम यहाँ क्या कर रही हो? ताइशा सोने की तैयारी कर रही थी जब उसे अपने कमरे में देखकर परेशान हुई। वो ताइशा दीदा, जब आपने स्टडी टेबल पर चाय गिराई तब आपका टसल कुर्सी से अटक गया था। आइंदा ऐसा कुछ भी करते हुए याद रखिएगा कि इस तरह की कोई चीज ना पहने जो आपकी गलती का सबूत छोड़ जाए। खैर अब वजह बताना पसंद करेंगी आप? धड़कन इतनी दलेर नहीं थी कि किसी की आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी गलती की वजह पूछ पाती, लेकिन न जाने क्या बात थी कि करदम की नजरों में खुद को गलत देख कर वो यहाँ तक आ चुकी थी। शायद बाबा की बातों का असर था। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझे क्या बताइए उनके कमरे में कैसे पहुंचा? मैं तो आज सारा दिन उनके कमरे में गई ही नहीं, और मैं वैसे भी उनके कमरे में नहीं जाती। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, ताइशा ने भड़क कर कहा। अपनी चोरी पकड़े जाने पर ताइशा को रोना आने लगा। अब ये रोना चोरी पकड़े जाने पर था या किसी और वजह से, धड़कन नहीं समझी, लेकिन उसके रोने की वजह से उसे मजीद गुस्सा आ रहा था। अपने ये ड्रामे करदम साई के सामने करें या फिर उसके सामने करें जिसे आपके इन ड्रामों पर यकीन हो? बताएं मुझे कि आपने करदम साई की फाइल पर वो चाय क्यों गिराई? बस धड़कन बहुत हो गया, हद होती है बदतमीजी की। अपना ना सही उसका ही ख्याल कर लो, वो उम्र में तुमसे बड़ी है। धड़कन को एहसास भी ना हुआ कि करदम कब उसके पीछे आया। मुझे तुम कभी भी इतनी बदतमीज नहीं लगी थी, माफी मांगो ताइशा से फौरन, वो गुस्से से धाड़ते हुए बोला। मेरी कोई गलती नहीं है करदम साई, वो चाहे ताइशा दीदा की रख के गई थी और अब उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया है। उसकी बात पर ताइशा के रोने में शिद्दत आ गई, जिसका मतलब साफ था कि वो पहले ही करदम को कमरे में देख चुकी थी, तभी उसने ये रोने धोने वाला ड्रामा किया था। बस करो धड़कन, बहुत होगी बदतमीजी, अभी के अभी माफी मांगो ताइशा से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करदम के गुस्से को देखकर धड़कन एक पल के लिए सहम सी गई, लेकिन वो क्यों डरती? वो गलत तो नहीं थी, बल्कि उसे जबरदस्ती गलत साबित किया जा रहा था। ठीक है ताइशा करदम से मोहब्बत करती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करे और उन दोनों में गलत फहमियां पैदा करे, वो भी तक जब इनका रिश्ता पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ। धड़कन तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं ने कहा अभी के अभी तायशा से माफी मांगो। वो एक एक लफ्ज चुबा चुबा कर बोला, आई एम सॉरी। अपनी गलती ना होते हुए भी माफी मांगकर धड़कन को रोना आने लगा, लेकिन उस शख्स के सामने वो बिल्कुल नहीं रोना चाहती थी, इसीलिए फौरन उस कमरे से निकल आई। बस तायशा रोना बंद करो, जो भी हुआ भूल जाओ, ये बात हम लोगों में रहनी चाहिए, बड़ों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तुम आराम करो मैं चलता हूँ, वो तायशा को देखते हुए बोला और कमरे से बाहर हो गया। जबकि उन दोनों के रिश्ते में पहली दरार डालकर तायशा बहुत पुरसकून थी। कल जो कुछ भी हुआ करदम नहीं चाहता था कि ये बात बड़ों में जाए। वो इतने छोटे छोटे मसलों में दादा साईं या चाचा साईं को शामिल नहीं करना चाहता था। उसने तायशा को तो मना कर दिया था, लेकिन उससे यकीन था कि धड़कन अपने छोटे दिमाग का इस्तेमाल जरूर करेगी, इसीलिए सुबह सुबह ही उसे मना करने उसके कमरे में आया था। लेकिन बदकिस्मती से वो इस वक्त अपने कमरे में नहीं बल्कि किचन में थी। उसे लगा था कि शायद सुबह सुबह उसे भूख लगी होगी, लेकिन मुलाजमा ने उसे ये बताया कि वो तो सुबह सुबह शायद आपके लिए नाश्ता बना रही है। करदम ने तो जैसे शायद लफ्ज सुना ही नहीं था, वो नाश्ता बना रही थी उसके लिए। उससे तो यकीन था कि वो उससे नाराज होगी, लेकिन यहाँ तो वो उसके लिए नाश्ता बना रही थी। करदम खुशगवार मूड में नाश्ते की मेज पर आया। मुकदम नहीं आया अभी तक नाश्ते की टेबल पर? मुकदम को ना पाकर उसने पहला सवाल यही पूछा था। नहीं, आज वो दोनों जा रहे हैं ना, मुकदम सामान गाड़ी में रखवा रहा है, दादा साईं ने बताया, और नाश्ता करने में मसरूफ हो गए। जबकि करदम अपनी बीवी के हाथ का नाश्ता करने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। रुक जाए दादो साईं, आप ये नहीं खा सकते, यहाँ देखे मैंने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया है, धड़कन भागते हुए आई और टेबल पर नक्शे नुमा पराठे रखते हुए बोली। दादो साईं ने एक नजर पराठे को देखा, फिर बेख्तियार मुस्कुरा दिए। वो जानते थे कि सुबह 6 बजे के बाद से वो किचन में घुसी हुई थी और उन्हें यकीन था इतनी देर में उसने यही पराठा ही बनाया था। बाबा साईं, आप भी ये नाश्ता मत कीजिएगा, मैंने आपके लिए भी अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। अहमद शाह का नाश्ते की तरफ जाता हाथ अचानक रुक गया। रिजवाना और नाजिया दोनों ही उसे देख रही थी। बाकी सब लोग खा सकते हैं, उसने बाकी सब लोग कहते हुए करदम को खास ध्यान में रखा था, यानी कि अब वो उसके लिए स्पेशल नहीं था। बाबा साईं, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, वो भी अपने हाथ से बनाई, उसने चाय पर जोर देते हुए अपने हाथों को हवा में लहराते हुए बताया। ये तो आज इनकलाब हो गया, अहमद शाह ने मुस्कुराते हुए कहा तो दादा साईं बोल उठे, खबरदार जो हमारी पोती के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा, इतनी मेहनत से उसने नाश्ता बनाया है, यही खाओ। अरे करदम साईं, आप क्यों रुके हैं, आप भी खाए ना, करदम को इस तरह से खामोश बैठा देखकर दादा साईं बोले। जी दादा साईं, मैं कर रहा हूँ, वो बदमजा होकर रोजमर्रा का नाश्ता देखने लगा जो हर लिहाज से परफेक्ट था, लेकिन आज उसे अपनी बीवी का टेढ़ा मेढ़ा पराठा चाहिए था। अपनी प्लेट में पराठा रखते हुए उसका ध्यान दादा साईं की प्लेट पर नक्शे नुमा पराठे पर गया था। काश ये सारी मेहनत उसके लिए की जाती, इससे पहले कि वो नाश्ता शुरू करता तायशा ने उसकी प्लेट में नाश्ता रखना चाहा। जरूरत नहीं है तायशा, मैं कर लूंगा, ना चाहते हुए भी उसका लहजा तल्ख था, जिस पर तायशा शर्मिंदा से होकर पीछे हुई। आज हुरिया नहीं निकली अपने कमरे से, रिजमाना फूफो ने बताना जरूरी समझा क्योंकि वो रोज ही करदम का नाश्ता अपने हाथ से लगाती थी। हुरिया की जरूरत नहीं है, मेरी अपनी बीवी है ये सब काम करने के लिए, उसने दरवाजे से अंदर आती धड़कन को कुछ चितलाती नजरों से देखा था, शायद उसे बताना चाहता था कि ये जो नाश्ता उसने बाबा साईं और दादो साईं के लिए बनाया है उसके लिए भी बनाना था। ना जाने कैसे लेकिन दादो साईं उसके अंदर की जलन को महसूस कर चुके थे। धड़कन बेटा, इसके लिए भी नाश्ता लगाओ, वो मुस्कुराते हुए धड़कन से बोले, जिसका मूड ऑफ होने लगा। लगाओ नहीं बनाओ, करदम ने हुक्म दिया, मैं थक गई हूँ, यही खा लें, वो उसके लिए नाश्ता निकालते हुए एक साइड हो गई। करदम ने घूर के देखा, फिलहाल मुझे भूख नहीं है, शाम तक अपनी थकन उतार लेना और मेरे लिए कुछ बना देना, वो उसे घूरते हुए उठकर बाहर निकल गया, जबकि अपनी पीठ पर उसकी नजरों की तपिश भी महसूस कर रहा था। बाहर आने के बाद देर तक सोचता रहा कि वो ये बचकाना हरकत करके क्यों आ रहा है। सब घर वालों ने नोट कर लिया था कि वो धड़कन के हाथ का नाश्ता बना करना चाहता था। धड़कन ने कितनी सफाई से उसे इसका बात का यकीन दिलाया कि वो उसके लिए खास नहीं है। वो खुद भी नहीं जानता था कि इतनी जरा सी बात पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन धड़कन को इस तरह से खुद से लापरवाह होते देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। मुकदम साईं, इतना सारा सामान, आप तो बस 15 दिनों के लिए जा रहे हैं, और आपने शहर वाला बंगला क्यों खुलवाने के लिए कहा? मुलाजिम बता रहे थे कि आप वहाँ शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, वो नाश्ते की टेबल पर आया तो दादा साईं पूछने लगे, बिल्कुल ठीक सुना है आपने दादा साईं, मैं हुरिया को लेकर शहर वाले बंगले में शिफ्ट हो रहा हूँ। उसने मेज पर मौजूद सब के सिरों पर धमाका किया था। वजह जान सकते हैं हम? दादा साईं को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसके मामले में वो हमेशा ठंडे दिमाग से सोचते थे। उसकी जिद के आगे उनका गुस्सा और ताकत हमेशा दब कर रह जाते। कर्दम जितना संजीदा मिजाज था, मुकदम का मिजाज उतना ही जिद्दी था। जिद उसकी जात का हिस्सा थी, इसीलिए वो उस पर गुस्सा करके उसे किसी किस्म की जिद नहीं दिलवाना चाहते थे। वजह बहुत मामूली सी है दादा साईं, कि यहाँ मेरी बीवी को मेरी बीवी होने की अहमियत नहीं मिल रही। आप लोगों ने हुरिया को अब भी सिर्फ मलिक की बेटी समझा हुआ है, ना कि मुकदम शाह की बीवी। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो मलिक की बेटी ही रहेगी आप सबकी नजरों में। और मैं अपनी बीवी को बात बात पर जलील होते नहीं देख सकता। उस लड़की की आंखों में आंसू आते हैं ना, तो मेरा दिल कांपने लगता है। वो उनकी आंखों में आंखें डालकर शिद्दत से बोला, मुझे लगता था मैं उससे मोहब्बत करता हूँ दादा साईं, लेकिन ये मामला मोहब्बत की हदूद से आगे निकल चुका है। अपनी मोहब्बत को बयान करने के लिए इश्क से बड़ा कोई लफ्ज नहीं होता। अगर होता तो वो भी मेरे हुरिया के लिए जज्बात बयान करने के लिए छोटा होता। आप लोगों को मेरी बीवी पसंद नहीं है, किसी के लिए वो मलिक की बेटी है तो किसी के लिए मनहूस, और आपके लिए अम्मा साईं। वो रुककर अपनी माँ को देखने लगा, आपके लिए तो वो एक आवारा लड़की है जिसने आपके बेटे को फंसा लिया। आइंदा मेरी बीवी के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिएगा, आपकी शायद वो कुछ ना लगे, लेकिन मेरी इज्जत है। आज से 15 दिन के बाद जब मैं वापस आऊंगा, मैं शहर वाले बंगले में रहूंगा अपनी बीवी के साथ, क्योंकि इस हवेली में अब मैं वापस तभी आऊंगा जब मेरी बीवी को मेरी बीवी होने की हैसियत मिलेगी। एक ही रात में तुम्हारे कान भर दिए उसने मुकदम साईं, रिजवाना ने उसे देखते हुए कहा। फिकर ना करें फूफो साईं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो तो कह रही थी कि आपकी तल्ख बातें सुनने की उसको आदत है, अफसोस तो मुझे किसी और पर है, उसने अम्मा साईं को देखते हुए कहा। उसके नजरों के हसार में वो खुद को महसूस करते हुए नाजिया का सर मजीद झुक गया। आपने कहा था ना आपकी हर चीज से बढ़कर मेरी ख्वाहिश है। अम्मा साईं, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो आपकी सोच का मुकाबला भी ना कर सकी। तुम ये घर नहीं छोड़ सकते मुकदम साईं, तुम जानते हो कि हमारे लिए कितने अहम हो। तुम जो चाहोगे वही होगा, आज से बल्कि अभी से हुरिया को इस घर में तुम्हारी बीवी की हैसियत से कबूल किया जाएगा। शायद हम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे अपने पोते को खुद से दूर करने का सोचते हुए भी दादा साईं परेशान हो गए। करदम, मुकदम और अब धड़कन, तीनों में इनकी जान थी, वो इन तीनों के बगैर नहीं रह सकते थे। ये सारी बातें मुझे नहीं, आपको हुरिया को बतानी होंगी, वो कहते हुए टेबल से उठ खड़ा हुआ। मतलब के साफ लफ्जों में वो उनको हुरिया से बात करने के लिए कह रहा था। हुरिया दीदा, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, चले नाश्ता करें। वो जानती थी कि हुरिया रात से उससे नाराज है। वो जब मुकदम को सब कुछ बता रही थी, तब हुरिया की आंखों में अपने लिए नाराजगी वो महसूस कर चुकी थी, और अब इतनी देर से उसके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। हुरिया ने एक नजर उसके मासूम चेहरे को देखा, फिर बेख्तियार मुस्कुरा दी। तुम बहुत शरारती हो धड़कन, मैंने तुम्हें मना किया था ना मुकदम साईं को वो सब कुछ बताने के लिए। वो अपना नाश्ता लेकर बाहर आई। शायद टेबल पर मौजूद लोग उसका ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नाश्ता तो वो काफी देर पहले ही कर चुके थे। और हुरिया बेटा बैठो, हमें तुमसे बात करनी है, दादा साईं ने उसे मुखातिब करते हुए कहा तो वो परेशान सी बैठ गई। देखो बेटा, कल जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज्यादा था, वो टेबल की तरफ देखते हुए बोले। वो कभी भी उससे बात करते हुए उसके चेहरे को नहीं देखते थे। शायद हम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे। हम सब ने कल तुम्हें बहुत हर्ट किया, हम तुमसे इसके लिए माफी चाहे। प्लीज, मुझे बुरा नहीं लगा, इससे पहले कि वो माफी मांगते हुए वो बोल उठी। वो शख्स की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहती थी, वो उसे अपने सामने झुकते तो कभी नहीं सोच सकती थी। मुकदम सही कह रहे हैं कि वो तुम्हें लेकर शहर वाले बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं, मामी ने बात में हिस्सा लिया। हम सब ऐसा नहीं चाहते हुरिया, तुम हमारे खानदान की बहू हो, मुकदम इस खानदान का बेटा। हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद हमारे लफ्जों से या हमारे रवैयों से तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे। आज से बल्कि अभी से मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में कबूल करती हूँ, लेकिन खुदा के लिए इस हवेली से मत जाना, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पाऊंगी, वो हाथ जोड़ते हुए बोली। उनकी आंखों से निकलते आंसू देखकर हुरिया अंदर तक कांप उठी। एक माँ अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की को कबूल कर रही थी जिसका बाप उसके शोहर का कातिल था। आप फिक्र ना करें मामी साईं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने कहाँ जाना है, ये तो हमारा घर है और सुबह का भूला शाम को अपने घर ही आता है, कहीं और नहीं जाता। हुरिया यार जल्दी से नाश्ता करो, क्या चिड़िया की तरह चुग रही हो। क्या कहा था तुमसे कि सुबह सुबह निकलेंगे और तुम अभी तक तैयार भी नहीं हो। वो उसे अपने घर के कपड़ों में देखते हुए अच्छा खासा तप उठाता। हम थोड़ी देर अपनी बहू से बात कर रहे थे। हुरिया बेटा आराम से नाश्ता करो और फिर सुकून से निकलना, इसे तो हर बात की जल्दी है। दादा सही कुर्सी से उठते हुए खुशगवार लहजे में बोले, जबकि मुकदम को आता देखकर नाजिया अपनी आंखें साफ कर चुकी थी, जबकि रिजवाना तो अभी भी उसे कहर परस्ती नजरों से देख रही थी। अच्छा ठीक है, तुम नाश्ता करो, तब तक मैं करदम साईं से डेरे पर मिलने जा रहा हूँ और जब तक मैं आऊँ तुम बिल्कुल तैयार मिलो मुझे, वो उसे कहता हुआ उठकर चला गया। जबकि हुरिया की खुशी की तो कोई इंतहा ही न थी। आज इतने सालों के बाद नाना साईं ने उसे इतनी मोहब्बत से मुखातिब किया, कल वो जिन लफ्जों से हर्ट हुई थी आज तो वो उन अल्फाजों को भूल ही चुकी थी। उसे इस घर में मुकद्दम शाह की बीवी की हैसियत मिली थी, ना कि मलिक की बेटी। उसका दिल चाहा कि मुकद्दम शाह के गले लग कर उसे अपने दिल की कैफियत बयान करे, लेकिन उसे पता था उसके बाद मुकद्दम शाह ने फ्री हो जाना है। मुकद्दम शाह की मोहब्बत और बेबाकी को समझते हुए बेख्तियार शर्माई, जबकि धड़कन करीब बैठी ओहो करती उससे लिपट चुकी थी। वैसे मुकद्दम लाला ने ऐसी भी कोई रोमांटिक बात नहीं की आप शर्माएं, वो उसे छेड़ते हुए बोली तो हुरिया मजीद शर्माने लगी। हा हा हा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो छोटी सी लड़की तुम्हारा दिमाग खराब कर चुकी है। करदम ने जब से उसे सुबह का वाला वाक्या सुनाया वो हंसे जा रहा था। और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो तुमसे इतनी खफा क्यों है, आखिर हुआ क्या है। उसकी बिगड़ी हुई शक्ल देखकर मुकद्दम पूछे बिना ना रह सका। यार वही चाय वाला किस्सा, करदम ने सरसरी सी वजह बताई। मतलब वो कल की वजह से तुमसे नाराज है, जो तुमने वो फाइल की वजह से उसे डांटा था, तो वो उसकी गलती थी, उसे चाय नहीं गिरानी चाहिए थी। और अगर गलती से चाय तुम्हारी फाइल पर गिर गई थी तो उसे बता देना चाहिए था। मुकद्दम को हुरिया ने सब कुछ बताया था, जिस पर मुकद्दम को सारी गलती धड़कन की ही लगी थी। चाय धड़कन ने नहीं गिराई थी, ताइशा ने गिराई थी, करदम ने उसकी बात काटते हुए बताया और साथ में बाकी की कार्रवाई भी बताई कि किस तरह से उसने धड़कन को ताइशा से माफी मांगने पर मजबूर किया। क्या ताइशा ने क्यों किया, मतलब वो ऐसा क्यों करेगी, मुकद्दम उसे देखते हुए पूछने लगा। और अगर तुम जानते हो कि चाहे ताइशा ने गिराई है तो फिर तुमने धड़कन को डांटा और उसे ताइशा से माफी मांगने पर मजबूर किया। अब मुकद्दम को करदम पर गुस्सा आने लगा। मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन ताइशा के दुपट्टे से उतरे मोती मेरे कमरे में पड़े थे, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे धड़कन को नहीं डांटना चाहिए था। रात को वो मेरे कमरे में चाय देने आई तो मेरा इरादा उससे बात क्लियर करने का था, लेकिन वो आगे नखरे दिखा रही थी और फिर उसके हाथ वो मोती लगे, जिसे उठाकर वो ताइशा के सर पर जा पहुंची और उससे अच्छी खासी बदतमीजी कर डाली। जो भी है, ताइशा उम्र में उससे बड़ी है और उसका मुकाम वही है जो एक घर की बड़ी बेटी का होता है। धड़कन की बदतमीजी पर मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने उसे डांट कर माफी मांगने के लिए कहा। तो बताओ मुकद्दम साईं, अगर दादा साईं से कोई गलती हो जाएगी तो क्या हम इस तरह से बदतमीजी करेंगे उनसे। नहीं ना, धड़कन को ये बात समझ लेनी चाहिए, आगे इस तरह के और भी हालात आएंगे और अगर मैं माफी नहीं मंगवाता तो बात बढ़ जाती और बड़ों में चली जाती। दादा साईं जमीन की वजह से पहले ही बहुत परेशान रहने लगे हैं, मैं नहीं चाहता कि घर में होने वाले छोटे छोटे मसाइल की वजह से दादा साईं की तबीयत मजीद खराब हो। चाहे धड़कन सही थी, लेकिन बदतमीजी तो बदतमीजी होती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को कोई बदतमीज कहे। वाह करदम साईं, यानी कि आपको धड़कन की बदतमीजी पर गुस्सा आया और ताइशा की घटिया हरकत पर गुस्सा नहीं आया। आज पहली बार उसे करदम गलत लगा था, उसका दिल तो चाह रहा था कि वो शादी पर किया जाने वाली ताइशा की हरकत भी उसके सामने खोल दे। ताइशा मेरी क्या लगती है जो मैं उस पर गुस्सा करूंगा, क्या हक है मेरा उस पर जो मैं उसे सही गलत की पहचान बताऊं। मेरी बीवी धड़कन है मुकद्दम साईं, मैं किसी बाहर की औरत पर यह हक नहीं रखता कि मैं उसे डांटूं या उससे माफी मांगने के लिए कहूं। करदम ने एक नजर उसे देखा जो उससे बहुत घूर कर देख रहा था। बहुत देर हो गई है मुकद्दम साईं, तुम्हें अब निकलना चाहिए, गुड़िया इंतजार कर रही होगी। उससे मिलकर वो खेतों की तरफ चला गया, जबकि मुकद्दम वहीं खड़ा सोच रहा था, इस इंसान को समझना कितना मुश्किल है, बेचारी धड़कन। यह सफर हुरिया की जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन सफर साबित हुआ था। वो मुकद्दम के संग बहुत खुश थी, मुकद्दम हर थोड़ी देर में उसे किसी न किसी बात पर छेड़ता उसका शर्माया हुआ रूप मुकद्दम को बहुत पसंद था। उसका तो हर रूप ही मुकद्दम की जान था। उसकी हर अदा मुकद्दम के लिए जानलेवा थी। उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास ये था कि उसकी जान उसके साथ है। गुजरते हर एक लम्हे के साथ हुरिया अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी। उसने कहां अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत सोचा था। ये तो मुकद्दम की संगत थी जो उसे दिन ब दिन और खूबसूरत बना रही थी। एक औरत चाहती क्या है अपनी जिंदगी में, सिर्फ चाहे जाने का एहसास। ये एहसास कितना खास होता है ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। वो हर किसी की मोहब्बत नहीं चाहती, वो मोहब्बत में सिर्फ अपने शोहर की मोहब्बत चाहती है, अपने साथी की मोहब्बत। वो उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहती है, चाहे जाने का एहसास महसूस करना चाहती है। शादी के इन 10 दिनों में हुरिया ने ये एहसास दिलो जान से महसूस किया था। हर गुजरते दिन के साथ मुकद्दम की मोहब्बत उसके लिए बढ़ती जा रही थी। वो हर नमाज में अपने लिए मुकद्दम की मोहब्बत को कभी कम ना होने की दुआएं मांगती थी, और मुकद्दम उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता, अपने हर अंदाज में उसे बताता कि वो उसके लिए कितनी खास है। वो जो कभी किसी की मोहब्बत अपने लिए महसूस नहीं कर सकी थी, अब उसे सवाए मुकद्दम के और किसी की मोहब्बत की जरूरत ही ना थी। पहले मुकद्दम सिर्फ उससे मोहब्बत करता था, लेकिन अब उसने उस घर में उसके लिए एक मकाम बनाया था। बेशक वो लोग उसे कभी अहाना शाह की बेटी के रूप में कबूल ना करते, लेकिन मुकद्दम शाह की बीवी के रूप में कबूल करने पर वो मजबूर हो चुके थे। वो इस घर की बेटी ना थी, लेकिन बहू तो थी। बस यही बात हुरिया को फर्श से अर्श पर बिठा गई थी। अब वो बेमोल नहीं थी, बल्कि इस घर के सबसे लाडले बेटे मुकद्दम शाह की बीवी थी, इस खानदान की बहू। और ये सिर्फ उसका मकान था जिस पर और किसी का कोई हक ना था। सवेरा दीदा, अब आप क्या करेंगी, मुझे कुछ बताएंगी? आखिर क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मैंने तो धड़कन और करदम साई की लड़ाई करवा के इन दोनों को अलग कर दिया। अब वो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे, लेकिन आपने कैसे उन दोनों को हनीमून पर जाने दिया? आपने कुछ नहीं किया, आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में? तायशा कब से उसके कमरे में बैठी उससे बातों में मगन थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो नहीं जानती थी, लेकिन उसकी पुरस्रार मुस्कुराहट बहुत कुछ बयान कर रही थी। जरूर उसके दिमाग में कोई ऐसी खिचड़ी पक रही थी जो बहुत कुछ तबाह करने वाली थी। बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होगा। धड़कन मुझे बता रही थी कि मुकद्दम साई हुरिया को बहुत पहले से चाहते हैं। वो कभी भी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। वो हमेशा से उस 2 टके की लड़की को अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहते थे। तो देखने दो, कुछ दिन ऐश करने दो, उन्हें जीने दो, उन्हें अपनी जिंदगी, और फिर उन्हें मेरे पास आना है हमेशा के लिए। मैं नहीं चाहती कि उनकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी रहे। वो हमेशा के लिए मेरे होने वाले हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो कुछ दिन उस लड़की के साथ गुजार लें जिसे वो कभी पसंद करते थे, सवेरा ने बेफिक्री से कहा। सवेरा दीदा, क्या आप मुझे अपनी प्लानिंग बताएंगी? वो उसकी बातों से अच्छी खासी घबरा गई थी। वो जरूर कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देने के बारे में सोच रही थी, और तायशा को उसकी बातों से होल उठ रहे थे। कुछ तो गड़बड़ थी जो सवेरा से नहीं बता रही थी। वो क्या प्लान कर रही थी, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, तायशा भी नहीं जानती थी, और उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो उसे कुछ भी नहीं बताने वाली। वो रात घर वापस आया तो धड़कन उसे कहीं नजर न आई। उसके बाद डिनर टेबल पर भी वो उसे कहीं नजर नहीं आई। खाना भी रोज की तरह आज भी मुलाजमों के हाथ का बना हुआ था, यानी कि उसके कहने के बावजूद भी धड़कन ने उसके लिए कुछ भी नहीं बनाया। तायशा ने सबको चाय पिलाई, वो भी कुछ भी बोले बिना पी गया। शायद वो धड़कन के साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर चुका था। शायद वो तायशा से माफी मांगने की वजह से उससे ज्यादा खफा थी। अपनी गलती ना होने के बावजूद माफी मांगना कितना अज़ियतनाक होता है वो समझ सकता था, लेकिन वो ये बात कभी नहीं समझ सकती थी कि करदम ने ऐसा क्यों किया। उसने हुरिया के अलावा कभी किसी को नहीं रोका टोका था। वो किसी पर भी अपना हक नहीं समझता था, या शायद धड़कन पर जरूरत से ज्यादा हक जमाने। खाना खा के वो रूम में आया और यही सब सोचने लगा। उसकी माँ कहा करती थी कि अपने से बड़े इंसान से कभी बदतमीजी मत करना, ये तुम्हारी तरबियत को 2 कौड़ी का कर देगी। शायद वो यही बात धड़कन को समझाना चाहता था। वो उसके अलावा भी धड़कन को बहुत सारी बातें समझाना चाहता था। वो उससे अपनी मुकम्मल बीवी के रूप में देखना चाहता था। वो जानता था कि धड़कन इमैच्योर है, लेकिन कल को इससे ये गांव संभालना था, इस गांव का सरपंच बनना था। तो धड़कन पर न जाने कितनी जिम्मेदारियां थी जो वक्त रखते उसे समझने और सीखनी थी, लेकिन शायद वो उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठा। मुकदम होटल चेकिंग करवा कर वापिस आया तो हुरिया गहरी नींद सो रही थी। शायद सफर से बहुत थक गई थी। उसे इस तरह से गहरी नींद सोता देखकर मुकदम बेख्तियार मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। गैर महसूस अंदाज में उसके माथे को चूमता हुआ वो उठ खड़ा हुआ। उसका आराम करने का बिल्कुल भी कोई इरादा ना था, बल्कि वो तो अपनी हुरिया को ख्वाबों की दुनिया में लाया था। वो इस हनीमून का हर लम्हा यादगार बनाना चाहता था। मुकदम नहीं चाहता था कि हुरिया के लबों से मुस्कुराहट एक सेकंड के लिए भी गायब हो। इस वक्त भी सोते हुए खूबसूरत सी मुस्कुराहट उसके लबों पर थी। तो मेरा सोना माही भी रेडी, एक खूबसूरत सा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। क्या मतलब आज फिर कोई शादी है? धड़कन जो अभी अपने कमरे में आई थी, अहमद शाह उसके पीछे आकर उसे शादी के बारे में बताने लगे। उनको लग रहा था कि करदम ने जो कल धड़कन को डांटा था वो मसला हल हो चुका है, क्योंकि उसके बाद इस बात का बिल्कुल भी जिक्र ना किया गया। हाँ, आज भी एक शादी है, गांव है, कोई ना कोई शादी होती रहती है। आपके दादा साई ने कहा है कि आप जल्दी से तैयार हो जाएं, हम सब लोग जा रहे हैं सवाए करदम साई के, अहमद शाह ने मुस्कुराते हुए बताया। करदम साई क्यों नहीं जा रहे? करदम को याद करते हुए धड़कन के लब मुस्कुराए। उसे तंग करके धड़कन को बहुत मजा आया था। वो भीड़ भाड़ में जाना ज्यादा पसंद नहीं करते, कहीं जाना जरूरी हो तो बेशक चले जाते हैं, अहमद शाह ने बताया। ठीक है, मैं जल्दी से तैयार होती हूँ, उसे बोलकर वो बाबा साई के कमरे की तरफ चल के आए। कुछ दिनों से उन दोनों के ताल्लुकात बहुत खुशगवार हो गए थे। धड़कन ने सब कुछ ठीक कर दिया था। अहमद शाह को बस एक बात का अफसोस था कि गुजरा हुआ वक्त वो वापिस नहीं ला सकते। अपने भाइयों को वापिस हंसते खेलते देख सकते थे और ना ही अपनी लाडली बहन आहाना के सर पे हाथ फेर सकते थे। माँ की ममता रूठे हुए तो न जाने कितने बरस बीत चुके थे, लेकिन वो बाप का साया खोना नहीं चाहते थे। जब से धड़कन और करदम का निकाह हुआ था, दादा साहब बहुत खुश रहने लगे थे और अब उन्हें खुशियों में वो अहमद शाह को भी मुकम्मल शामिल रखते। हाँ भाई धड़कन, तैयार हो? तायशा, सवेरा और घर के बाकी सब लोग जाने के लिए तैयार थे, जब धड़कन को महसूस न करके दादा साई ने पुकारा। करदम अभी अभी घर वापस लौटा। सबको इस तरह से तैयार देखकर वो समझ चुका था कि वो सब लोग शादी पर जा रहे हैं। धड़कन भी आ गई। अहमद शाह ने उसे सीढ़ियों से उतरते देखकर कहा। करदम की नजर बेख्तियार उस पर उठी थी। सफेद अनारकली फ्रॉक में सर पर खूबसूरती से दुपट्टा सजाए वो किसी और ही दुनिया की खूबसूरत तरीन परी लग रही थी। करदम की नजर उस पर रुक सी गई। माशाल्लाह, मेरी शहजादी तो बहुत खूबसूरत लग रही है, दादा साई ने अपने सीने से लगाते हुए कहा तो वो बेख्तियार शर्मा दी। धड़कन, एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। करदम उस पर से नजरें हटाता अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मैं शादी पर जा रही हूँ। धड़कन जानती थी कि करदम जानता है कि वो शादी पर जाने के लिए तैयार हुई है, फिर भी उसे इस तरह से ऑर्डर झाड़ रहा है, वो भी जबकि वो जा रही है। इसीलिए धड़कन ने उसे बताना जरूरी समझा कि फिलहाल वो उसके लिए चाय तो हरगिज नहीं बना सकती, और वैसे भी उस दिन की इज्जत अफजाई के बाद धड़कन ने कसम खा ली थी कि अब उसका कोई काम नहीं करेगी। धड़कन, शायद तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा चाय बनाकर मेरे कमरे में लाओ, इस बार करदम जरा सख्ती से बोला। धड़कन ने दादा साई की तरफ देखा। दादा साई ने एक नजर धड़कन की तरफ और फिर करदम की तरफ देखा, फिर धड़कन को देखते हुए ठहरे हुए लहजे में बोले, बेटा जाओ अपने शोहर को चाय बना कर दो, तुम कल वलीमे पर चली जाना। अब तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो गाड़ी में बैठो। वो धड़कन को बात करने का मौका दिए बगैर आगे बढ़ गए। जबकि करदम अपने कमरे की तरफ जा रहा था, धड़कन का मूड बुरी तरह से ऑफ हो चुका था। बहुत शौक है ना मेरे हाथ की चाय पीने का, आज ऐसी चाय पिलाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। वो गुस्से से किचन की तरफ आई और गुस्से से चीजें पटकती बर्तन इधर उधर कर रही थी। चीनी और नमक के डब्बे सामने रखते हुए उसके शरारती दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। अहम सॉरी करदम साई, मुझे पता नहीं चला नमक कौन सा था और चीनी कौन सी थी, उसको तो लौंग बोलते हैं ना, वो शरारत से कहती एक डब्बा उठाने लगी। चाय की पत्ती भी तो कुछ उसी की तरह दिखती है। उसने लौंग का चमचा भरते हुए चाय के पानी में उंडेल दिया और फिर नमक के तीन बड़े साइज के चम्मच अपनी शानदार चाय का हिस्सा बनाने लगी। नमक के नाम पर चीनी की बस एक चुटकी ही डाली थी, क्योंकि दोनों एक जैसी होने की वजह से वो दोनों में फर्क नहीं कर पाई। गलती से नमक की जगह चीनी और पत्ती की जगह लौंग डाल दिए। करदम साई, आपकी शानदार चाय तैयार है। चाय को कप में डालती वो उसके कमरे की तरफ जाने लगी। बेशक आज उसके हाथों में जो डिश तैयार हुई थी वो चाय के अलावा कुछ भी कहलाई जा सकती थी। तुम्हें ठीक से पता है ना कि वो लोग कौन से होटल में ठहरे हैं? एहसन मलिक ने अपने लोगों से पूछा तो उन्होंने उसे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी। उन लोगों पर नजर रखो, लेकिन ध्यान रखना कि मुकदम शाह बहुत तेज इंसान है, उसे ये सब कुछ पता ना चले। उसका दिमाग चीते की रफ्तार को मार दे सकता है और उसकी नज़र चील की नज़र को भी। अगर उसे शक हुआ और मेरी बेटी पर आंच आई तो तुम लोगों में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। सर बेफिक्र हो जाएं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हम आपकी बेटी और मुकदम शाह पर नजर रखेंगे और जब आपकी बेटी अकेली होगी तब आपको खबर दे देंगे। आप उससे मिलकर सब कुछ बता दीजिएगा। फिलहाल भी आपकी बेटी कमरे में तन्हा है, लेकिन मुकदम शाह उसका बहुत ख्याल रख रहा है और हर थोड़ी देर के बाद वो कमरे में जा रहा है। ये ना हो कि आप पकड़े जाएं, उसके आदमी ने बताया। ठीक है, लेकिन मुकदम शाह के हर कदम पर नजर रखो और हुरिया को तन्हा पाते ही मुझे बताओ, मलिक ने फोन रखते हुए कहा। वो वक्त दूर नहीं कासिम शाह साईं, जब मेरी बेटी मेरे पास होगी। वो ख्यालों में शाह साईं से मुखातिब था।